ब्रह्मा मुख से जो
है,
ब्रह्मा मुख से जो वाणी चली उसको वेद वाणी कहा गया है।
हाँ,
अभी ये जो अव्यक्त वाणी चलती है इसको क्या नाम है?
ये वाणी देवता की वाणी चला रही है या परमात्मा वाणी चला रहा है? जो इस मनुष्य सृष्टि का दैवी युग सतयुग का पहला देवता है, पहला पत्ता है, वो वाणी चला रहा है। तो जैसी आत्मा होगी वैसी ही बात सुनाएगी या दूसरी प्रकार की बात सुनाएगी? देव आत्मा है तो धारणाओं की बातें सुनाएगी या ज्ञान की वाणी सुनाएगी? धारणाओं की वाणी सुनाती है। जो भी अव्यक्त वाणी चली है उनमें ज्ञान का पुट बहुत कम है और धारणाओं का पुट बहुत ज्यादा है। सुप्रीम सोल बाप जो दादा लेखराज ब्रह्मा की तन से वाणी चलाई उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। ब्रह्मा को अपने ही जन्मों का आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान अभी तक नहीं है। कोई भी आत्मा को पूरे जन्मों का ज्ञान नहीं है। तो अपना ही ज्ञान नहीं है तो सारी सृष्टि का ज्ञान कैसे सुनावेगी? इसलिए वो है ज्ञान की वाणी। ज्ञान कहा जाता है विद, विद माने जानकारी। वेद वाणी शिव की सोल सुनाती है। और ऐसे भी नहीं है कि अव्यक्त वाणी ज्ञान से कोई विपरीत पॉइंट सुनाती है, नहीं। अव्यक्त वाणी का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो ज्ञान की वाणी वेद वाणी मुरली के वर खिलाफ जाता हो। ये एक खासियत है, नहीं तो दो आत्माओं की वाणी में विरोधाभास जरूर हो जाता है। एक मुख की बात दूसरा मुख बोलेगा तो कुछ न कुछ अंतर जरूर हो जाता है। और
बाबा ये साढ़े चार लाख जो आदमी जन्म देने वाले होंगे उनका सतयुग में पाठ कब तक चलेगा? सतयुग के पहले जन्म में उनका पाठ कब तक चलेगा? जन्म लेने वाले तो होंगे ही ना, उसके बाद आने वाले तो
जन्म लेने वाली आत्माएं और जन्म देने वाली आत्माएं साथ साथ उतरती है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा और सतयुग में कृष्ण को जन्म देने वाले बाप की आत्मा
इकट्ठे होंगे,
दोनों साथ साथ विष्णु बन करके आवेंगे या आगे पीछे हो जाएगा?
तो पहली गद्दी जो होगी वो सतयुग की जो पहली गद्दी होगी उसमें संगमयुगी नारायण का पाठ कब तक चलेगा?
जब तक वो बड़ा रहो ना,
बच्चा।
हाँ, बच्चे को बड़े 100-150 टाइम लगेगा,
150 साल का उसमें एक आत्मा का पीरियड है।
शुरुआत में थोड़ा लंबा टाइम भी लग सकता है, लेकिन सतयुग जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे टाइम की लिमिट कम होती जाएगी। जैसे गाय का बच्चा है मनुष्य के मुकाबले जन्म लेता है और जन्म लेते ही छलांगे मारने लगता है, ऐसे ही है। और
संगम युग जैसे 100 वर्ष का है,
हाँ,
उसमें से 50 वर्ष सतयुग के होंगे और 50 वर्ष कलयुग के होंगे।
वो सिर्फ एक आत्मा के लिए, सब के लिए नहीं। जो घोषणा की थी 65-66 में 10 वर्ष की, वो घोषणा एक पेयर के लिए, एक युगल के लिए की है, या वो घोषणा सभी के लिए लागू होती है? एक के लिए लागू होती। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। तो 65 में से वो 10 वर्ष का जब हिसाब निकाला जाता है तो 75-76 आता है। जन्म का मतलब है प्रत्यक्ष होना। जैसे गर्भ से बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, माने जन्म लेती है। तो उनके लिए ये बात लागू होती है। और
ये जो अमर कथा का वर्णन आता है उसका कहीं भक्ति मार्ग में कोई, जैसे सत्यनारायण की कथा का बना हुआ है कोई सिस्टम?
अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तिजोरी की कथा कहो, ये अमर रहने वाले की कथा है या बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होकर के मरने वाले की कथा है? है तो अमर रहने वाली आत्मा कौन है? है? दो ही आत्माएं हैं जो अमर रहती हैं, लक्ष्मी नारायण संगमी भी है। जब से निश्चय बुद्धि बनते हैं, चाहे प्यार के आधार पर अमर रहते हैं, उनको बाप दादा का प्यार मिलता है, साक्षात्कार होते रहते हैं, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला से खुश होते रहते हैं, ये तो भक्तों की बात हो गई। नंबर वन सीता भी तो एक ही होगी ना, कि सभी होंगी? नंबर वन, नंबर वन एक सीता, तो वो प्यार के आधार पर प्रसन्न रहती है। और दूसरी आत्मा है ज्ञान के आधार पर प्रसन्न रहती है, ज्ञान भरपूर भरा हुआ है, तो कोई भी समस्या आती है, परिस्थिति आती है, ज्ञान के आधार पर राई को भी, वो पहाड़ को भी राई बना देता है, प्रभावित नहीं होता। तो उसके लिए सतयुग है या कलयुग है? है? मृत्युलोक है या अमरलोक है? अमरलोक है। बेहद की बातों को भक्ति मार्ग में हद में पलट दिया है।
चक्रव्यूह का जो ज्ञान है उसको भी अमर कथा ही कहेंगे?
बिल्कुल, ज्ञान पूरा नहीं लेते हैं तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। पूरा ज्ञान उठाएं तो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए।
क्या इन सब का कोई भक्ति मार्ग में है, कोई है कोई जैसे पुस्तक बनी हो या कोई इसका यादगार?
किस बात का?
चक्रव्यूह में
अभिमन्यु की पुस्तक नहीं बनी हुई है, अभिमन्यु नाटक नहीं है।
उसमें क्या ज्ञान दिया गया?
उसमें यही ज्ञान दिया गया है कि ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, सिर्फ देहधारियों के प्यार में रहते हैं। मेरा बाप अर्जुन जैसा पुरुषार्थी है, बड़े के बड़ा शस्त्रधारी है, ऐसा है वैसा है। मेरा मामा भगवान है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन ज्ञान भी तो पूरा उठाना पड़े ना। भगवान में जो ज्ञान है वो ज्ञान उठाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन में जो शिफ्त है पुरुषार्थ करने की, वो शिफ्त धारण करने की जरूरत नहीं है, वो भी तो धारण करना चाहिए। वो धारण नहीं किया तो देह अभिमान वाली बात हुई या ज्ञान की बात हुई? उसका नाम अभिमन्यु पड़ गया, अभिमान। देहधारी का अभिमान या ज्ञान का अभिमान? देहधारी का अभिमान था, पूरा नाटक ही बना हुआ है, अभिमन्यु नाटक, नाटक बना है तो किताब भी बनी हुई है। और कोई एक आत्मा की बात नहीं है, ऐसे अभिमन्यु की तरह पार्टधारी पात्रधारी ढेर की ढेर आत्माएं हैं, जो ज्ञान के प्रोसेसर को महत्व नहीं देती, भट्टी को महत्व नहीं देती, उर्ली को महत्व नहीं देती, सिर्फ देह के प्यार में चलते जाते हैं।
मुरली में बोला बाबा ने कि 2018 में संवत 1-1 शुरू हो जाएंगे, वो किन आत्माओं के लिए होगा?
सबके 500 करोड़ के लिए होगा या ब्राह्मणों की दुनिया के लिए होगा? बस
और जितने भी पुरुषार्थी हैं सबके लिए।
पुरुषार्थी का मतलब क्या है? पुरुष माने आत्मा, जो आत्मा बनने की पुरुषार्थी, तो सब है आत्मा बनने की पुरुषार्थी। 33 करोड़ देवताएं हैं, उनके तो जन्म ही 20 कम हो जाते हैं बहुतों के। आत्मा वो है जो आज से अंत तक आत्म की स्थिति में रह करके पार्ट बजाने वाली आत्मा है।
बाबा रक्त वाणी में जैसे बाप दादा दो शब्द आते हैं,
है
व्यक्त वाणी में बाप दादा, तो ये दो आत्मा ही है, इसका क्या हिसाब है?
अव्यक्त वाणी में बाप दादा जो दृश्य दिखाते हैं और देखते हैं और उन बातों का बखान करते हैं, बाप दादा ने देखा तो जब बाप कहा जाता है तो उसमें बेहद का बाप भी समाया हुआ है और जो लौकिक बाप है 500 करोड़ का कौन पिता वो भी समाया हुआ है, दोनों बेहद के बाप है। और दादा जब कहा जाता है तो उन दोनों बेहद के बाप का पहला पहला बच्चा पहला पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। वो सब पत्तों का दादा है, बड़ा भाई तो दादा है, दोनों कंबाइंड हैं। उनके लिए बोला है कि बच्चे बाप दादा को अलग करते हैं बार बार और वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत और राम के भगत आपस में झगड़ा चलता रहता है, वो कहते हैं राम पहले, वो कहते हैं कृष्ण पहले, वो कहते हैं राम बड़ा, वो कहते हैं कृष्ण बड़ा। अब दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ होता है या आगे पीछे होता है?
एक साथ
है। बाप बच्चे के लेकर इस जलती हुई आग की दुनिया से बाहर निकल सकता है? हैं? मकान में आग लग रही हो और बाप बच्चे को छोड़ करके जलता हुआ छोड़ करके निकल जाएगा? नहीं, दोनों को साथ साथ जाना है और साथ साथ इस सृष्टि पर दोनों ही आत्माएं उतरती है।
ऐसा है बाबा के राम वाली जो आत्मा है
आज
उसके लिए तो कहीं जैसे कृष्ण को कहा गया श्याम सुंदर, तो उसी जीवन में वो श्याम होता है उसी में सुंदर बनता है।
कृष्ण किसका नाम है? देहधारी का नाम है या आत्मा का नाम है?
देहधारी का
नाम, देह के बगैर तो दूसरे नाम होते ही नहीं। एक शिव का नाम ऐसा है जो बिना देह के नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम
शिव है।
बाकी जितने भी नाम हैं वो सब संगम युग में पड़े हैं देवताओं के।
राम वाली आत्मा को भी अब लास्ट में जो नीचे आना पड़ता है तो उसको श्याम सुंदर नहीं कहा गया?
लास्ट में आना पड़ता
है नीचे, नीचे लास्ट में तो वो भी रावण ही बनता है ना, राम
तो वह कंस कंस नहीं बनता है,
कंस कृष्ण भी कंस तो बनता है,
लेकिन तो साथ तो काम करने का पार्ट है ना,
उसको तो श्याम सुंदर कहा गया, राम को नहीं कहा गया।
राम और कृष्ण को भक्त अलग अलग करते हैं, यही तो कहा, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो दोनों मिलकर
एक
फिर कंबाइंड हो जाएंगे, आप अभी अभी अलग अलग कर रहे हैं। हाँ जी
बाबा,
हाँ
प्रजापिता जब वाणी की क्लैरिफिकेशन देते हैं, जब बाबा वाणी की क्लैरिफिकेशन देते हैं,
प्रजापिता देते हैं
शिवाय, तो उस समय कृष्ण की सोल भी उस शरीर में हाजिर होती है या वो अपनी वाणी सुनाने वहाँ पहुंचा होता है दादी गुरुदार?
सवाल ही पैदा नहीं, जो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है उसमें ऐसी शक्ति होती है कि एक ही टाइम पर अनेक काम कर सकती है। राम के संग के रंग में आकर के कृष्ण की सोल भी भले सूक्ष्म शरीर डाली है तो भी संग के रंग में आकर के बीज रूप बन जाती है।
बाबा जी बात तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण वाली सोल जो है वो राम के संग में आकर बीज रूप स्टेज धारण कर देती है,
हम कह रहे हैं प्रूफ नहीं है,
ये प्रूफ है बाबा।
हाँ।
लेकिन वो तो मानते नहीं, वो कहते हैं ना राम है ना शंकर,
कब मानते हैं कब नहीं मानते हैं,
वो तो कहते हैं कृष्ण,
वो माने कौन,
बीके वाले,
बीके
वाले अज्ञानी है, अज्ञानी तो कुछ भी कहेंगे, अज्ञानी जो कुछ भी कहते हैं उस बात पर हमको ध्यान देना जरूरी है कि वो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, वो तो अज्ञानी है कुछ भी कहे, हमको तो उसकी वैल्यू नहीं, हियर वैल्यू,
वो इवल कहते हैं ना, हियर नो इवल, हियर नो इवल,
हियर नो इवल, डोंट केयर, उनकी बातें सुनकर के हम अपनी अवस्था क्यों खराब करें, हमें बाबा की बात सुननी है या दूसरों की बात सुननी है। श्रीमत के बरखिलाफ बाप को रावण संप्रदाय समझो, ये मुरली का डायरेक्शन है, अगर वो उनके मुख से कुछ श्रीमत की बरखिलाफ बातें निकलती है तो कौन संप्रदाय है,
रावण,
हाँ उनकी बातें क्यों सुने। और
भगवान की महिमा में एक शब्द आता है निरंजन,
हाँ जी, अंजन कहते हैं काजल को, आंख में अंजन लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं काजल, काजल कहते हैं पाप को, कालिमा को, गोरे कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं,
काले कृष्ण
की, किसकी पूजा करते हैं,
काले कृष्ण
की, जब गोरा हो जाएगा तो सतयुगी हो जाएगा, सतयुग वालों की पूजा नहीं होती, कहाँ वालों की पूजा होती है,
संगम वालों,
संगम वालों ने जिन्होंने पुरुषार्थ की स्टेज को पकड़ा है उनकी पूजा होती है, कृष्ण को भी काला, राम को भी काला, शिवलिंग को भी
काला,
क्यों कर देते हैं, शिव काला होता है क्या, शिव काला नहीं होता, वो जिसमें लिंग में प्रवेश करता है
वो काला,
जो अपनी ऐसी निराकारी बाप समान स्टेज बनाता है वो काला होता है, इसलिए स्वर्ण लिंग कहा जाता है, रजत लिंग कहा जाता है, ताम्र लिंग कहा जाता है, लौह लिंग या पत्थर लिंग कहा जाता है, बनाया भी जाता है। तो काला जो है वो अंजन का सूचक है, कालिमा का सूचक है, काले कर्मों का सूचक है, काला है तो ग्लानी भी होती है और गोरा है तो ग्लानी
नहीं होती,
तो ग्लानी नहीं होती।
कृष्ण को काले रूप में क्यों पूछते हैं,
इसलिए कि पुरुषार्थ में कभी थका नहीं है,
पूजा तो होनी चाहिए पवित्रता की,
जब पवित्रता की होती है ना, पवित्रता को धारण करने में वो थका नहीं है कभी, जैसे कोई साइकिल सवार होता है और साइकिल को सवारी करते करते गिर जाए और छोटे साइकिल को भाग गया, हम नहीं सीखते तो थक गया हार गया, पूजने योग्य है या नहीं है,
तभी तो
नहीं थक गया, बीच में काम को छोड़ दिया, जो श्रेष्ठ आत्मा होती है वो एक बार जो प्रण ले लेती है वो बीच में
छोड़ती
नहीं है। ये उनकी विषय हिम्मत है बच्चे मदद देवा,
इसीलिए युधिष्ठिर भी है वो
बाबा वाणी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे अच्छा
है?
बाबा की वाणी में आता है जैसे अच्छा उसका क्या अर्थ हम देंगे?
उसका मतलब ये है कि वाणी चलाने वाली आत्मा ब्रह्मा देवता की है या बाप की है?
बाप की है?
और देवता को आंखों से क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। अच्छा अच्छा देखेगा या बुरा भी देखेगा?
अच्छा
देखेगा। पॉजिटिव देखेगा या निगेटिव भी देखेगा? ब्रह्मा ने अपने जीवन में क्या देखा? बच्चों की अच्छाइयां देखी या बुराइयां भी देखी? बच्चे कैसे भी हो, कुछ भी करने वाले हो, कुछ भी सोचने वाले हो, कुछ भी देखने वाले हो, कैसी भी दृष्टि वाले हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या देखा? अच्छा ही देखा ना। तो वाणी क्या बोलेगी? है अच्छा ही अच्छा बोलती
व्यक्त वाणी
है,
व्यक्त वाणी में अच्छा आता है,
व्यक्त भाव है ही नहीं। और
बाबा जब विष्णु का पाठ शुरू होता है तो फिर ये पूरी फैमिली बाबा की एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं?
अभी जब फाउंडेशन पड़ रहा है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं
पड़ रहा है?
तो साथ ही साथ होंगे या बिछड़े हुए होंगे? अभ्यक्त वाणी में तो बोला है बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते।
बाबा जैसे अभी मनोज इंदिरा दादी ने शरीर छोड़ा है,
हाँ जी,
तो इनको भी जन्म लेना पड़ेगा?
क्यों जन्म लेना पड़ेगा? उन्होंने एडवांस के ऊपर विश्वास धारण करके एडवांस का पक्ष ले लिया, एडवांस बाप को पहचान करके अपना लिया या नहीं अपनाया?
नहीं
अपनाया। तो जहां तक ब्रह्मा बाबा पहुंचे हैं वहीं तक उनकी पहुंच है,
जन्म नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा? और फिर वो ये बात को छुपाया क्यों गया? क्यों उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? कुमार का दादी की भी बात को छुपाया गया। और
कैसे शरीर छोड़ा
है?
कैसे छोड़ा?
जरूर अचानक शरीर छोड़ा है। हाँ, अकाली मौत होती है तभी सूक्ष्म शरीर मिलता है। और
कब छोड़ा जी शरीर उन्होंने?
है
नरेंद्र
अभी अभी चार से आठ दिन हुए। और
तो उसकी भी समाधि बनाएंगे?
अब वो क्या करेंगे, मुसलमान होंगे तो समाधि बनाएंगे, सन्यासी होंगे तो समाधि बनाएंगे, क्रिश्चियन होंगे तो समाधि बनाएंगे, विधर्मी होंगे तो क्या करेंगे, वो तो समाधि बनाएंगे। अब पक्के देवता होंगे तो नाम निशान खत्म करेंगे शरीर का, कोई यादगार नहीं रखेंगे। मैं आत्मा हूं, देवता 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है, वो पक्का आत्मिक रूप धारण करते हैं, राख बना देते हैं देह अभिमान को, जलने के बाद क्या रह जाती है? राख।
देह अभिमान को पूरा जलाना पड़ता
है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं होती हैं वो राख नहीं बनाती है। कहां की यादगार? संगमयुग में वो आत्मा देहवान को छोड़ नहीं पाती, इसलिए 84 जन्म
ले नहीं पाती,
पूरी आत्मा बनती नहीं, कुछ न कुछ जन्म कम हो जाते हैं। और आप जल्दी जल्दी पूछो और टाइम पर क्लास पूरा करना है, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी।
बाबा परदादी किसको बोला है? अभी अखबारी में परदादी किसको बोला?
वास्तव में है
निर्मल शांता को।
नहीं नहीं, निर्मल शांता ने तो अलग बात की है। क्या
परदादी?
हाँ, निर्मल शांता से बात अलग की है और परदादी का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब जो भी अभ्यक्तवाणी में नाम लिए जाते हैं, बाप दादा एडवांस वालों से स्पेशल बात करते हैं या बेसिक वालों से करते हैं? हाँ, एडवांस में कोई परदादी है जो सूर्यवंशियों की भी दादी है, उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता है।
बाबा आंटी अंकल,
हैं? आंटी तो चाची को कहा जाता
है।
वो युगल है अंटा आंटी विदेश के। और हाँ जी
बाबा, मनसा मनसा सेवा में सभी की आत्माओं की मनसा सेवा की जाती है, जब कुछ विशेष मार्च किया जाए
तो आपके ऊपर है, आपका किन आत्माओं से लगाव है, आपका कहाँ ज्यादा झुकाव है।
पर बाबा, बाबा के बच्चे तो कुछ आत्मा ही है, सभी तो नहीं है।
हाँ ठीक है, तो किनकी सेवा मनसा सेवा करनी चाहिए? हाँ, ज्योतिबिंदु में बीज में तो सारी दुनिया समाई हुई है, तो बीज को अगर मनसा से याद करते रहेंगे तो सारे वृक्ष की सेवा स्वतः ही हो जाती।
बाबा, गुरु का बुलाव मौत का बुलावा, इसका अर्थ क्या है? गुरु का बुलाव मौत का बुलावा, इसका अर्थ क्या है?
गुरु का बुलावा,
गुरु का बुलावा,
मौत का बुलावा,
गुरु
गुरु
जितने भी दुनिया में संबंध हैं, उन सब संबंधों में सबसे ज्यादा सम्मानजनक संबंध कौन सा है?
गुरु।
जिसका अगर अपमान किया तो खैर नहीं, तो है तो वास्तव में सदगुरु, लेकिन मनुष्यों ने वो टाइटल ले लिया है, गुरु बन गए। तो एक परमात्मा ही ऐसा है जिसका अपमान करने से खैर नहीं है। बाप की तो बात कभी भी नहीं पलटनी चाहिए, बाप का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बाप को ठुकराया माने जन्म जन्मांतर के अपने भागी को ठुकराया। और
बाबा, मधुबन से एक वरिष्ठ भाई अशोक बाबा ज्ञान सरोवर में संघ मैनेजर हैं, वो हमारे पास चल करके आए थे।
तब की बात है,
अभी तीन चार दिन पहले थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कंपिल गया हूँ, मैंने भर्ती की।
अशोक बाबा और निर्भय भाई?
हाँ, अशोक बाबा
और
उसके साथ और भी एक दो थे।
हाँ गए
हैं, भर्ती की उन्होंने,
गए हैं, लेकिन उस समय तो वो गुप्त रूप में गए, किसी को पता ही नहीं होगा। छोटे के बच्चे जो एडवांस में आए हुए हैं वो उनको क्या पहचाने, वो तो नए आने वाले
हैं। कहते हम कंपेयर गए, हमने भर्ती भी की है।
हाँ,
हमने सारा लिटरेचर भी पढ़ा है।
बट्टी बट्टा तो कुछ नहीं किया, उनका नाम तो है नहीं, ना उन्होंने साइन किए हैं अपने। चोर बन के गए हो वो तो राहु और केतु का पार्ट हो जाता है।
मेरे से जो प्रश्न किए मैंने उसका बहुत अच्छे ढंग से योगयुक्त और बाबा की मुर्गियों के मुताबिक जब उत्तर दिया तो उनका बिल्कुल जैसे ना बोल ही नहीं पाए उससे,
हिल गए।
उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आपने बाबा का मेडिटेशन रूम बनाया है?
हाँ।
तो मैंने यही उत्तर दिया कि बाबा की श्रीमत यही है कि उसी कमरे में भोजन बनाओ, उसी में खाओ, उसी में रात को सो जाओ और उसी में सुबह सफाई करके क्लास करो। तो वो तो आगे बोल ही नहीं पाए, दो चार बातें जो उन्होंने मेरे से पूछी तो वो तो आए थे मुझे कुछ
समझाने के लिए
है? लेकिन उल्टे पांव जो है वो चले गए।
लेकिन वो मानने वाले
नहीं, मैंने उनको एक सीडी दी है और एक पुस्तक दी थी, मैंने कहा स्टडी जरूर करना, आप वहां गए थे, लेकिन मैं तो वहां श्रद्धा भावना से गया। मैंने उनको ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट दिए कि जैसे आपकी भावना में कमी रही होगी, क्योंकि ज्ञान तो उसी को मिलेगा जिसकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। तो मैंने कहा मैं तो बड़ी गहराई से इस ज्ञान को जो है स्टडी किया हूँ, बाकी इसमें सच्चाई है। तो वो कुछ भी बोल नहीं पाए, वो ऐसे चले गए फटाफट।
टीचर ले जाने के बाद कोई जवाब भी नहीं दिया अभी तक।
नहीं, मैं पत्र लिखूं उनको?
ना, आपने पत्र लिखा?
नहीं, मैं लिखूंगा उनको।
नहीं, उन्होंने तो कोई जवाब अभी तक नहीं दिया।
नहीं, अभी तक नहीं जवाब आया,
क्योंकि उनके पास तो लिटरेचर पहुंचता रहता है।
नहीं, वो पढ़ते नहीं है,
देखते हैं सरसरी नजर से।
उनको बड़ा वंडर हुआ,
लेकिन देखने का जो तरीका है उनका वो भाव नहीं है।
जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उनको बड़ा वंडर लगा कि ये कैसे चले गए।
जी, क्या बात है,
उस पार्टी में है कैसे?
क्या वो अपना दुख का समझते थे?
वो तो
बाबा ने कहा है कि जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही योगी भी होगा, लेकिन जो माताएं होती हैं उनमें उतना ज्ञान तो नहीं होता है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं, तो वो कैसे?
ज्ञानी का मतलब कुकड़ ज्ञानी नहीं कि दूसरों को जगा दे और खुद
सो जाए।
वो भी ठीक। रुद्रमाला की मड़कों में मां काली का भी पार्ट है मुख्य। जगदम्बा बनकर के दूसरों को जगा देती है, फिर जब मां काली बनती है तो खुद सो जाती है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारती है, पवित्र जीवन संसार के सामने आता है या अपवित्रता सामने आ जाती है? चांद डाल लो, पूजा करते हैं। वैष्णवी देवी की पूजा वैष्णव करते हैं। एक है पवित्रता की पूजा।
बाबा, महाकाली अभी शुरू हो गई कहीं? प्रकट हुई कलकत्ता में होनी चाहिए।
हर एक आत्मा पहले गर्भ में अपना पार्ट बजाती है, मुक्त में। इसलिए अभी कवाने में बोला है मम्मा कहाँ है? घूंघट में। तो घूंघट में पर्दे में है तो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? घूंघट में। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष भी हो जाएगी।
बाबा, नेपाल में महात्मा बुद्ध का अवतार बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ इस समय।
हाँ, लुमिनी।
हाँ जी,
हाँ जी।
तो क्या ये सच्चाई है या इसमें
नेपाल किसे कहा जाता है? बेहद
नई दुनिया के पापा नहीं होती
है।
नई दुनिया की
पापा, नई दुनिया की पालना करने वाला गुरु।
वहाँ उन्होंने उसको
नई दुनिया की पालना करने वाला जो ग्रुप है, जो एडवांस में कार्य कर रहा है, वो ऊंची स्टेज वाला होगा या निचली स्टेज वाला होगा? एक ही दुनिया में ऐसा देश है भारतवर्ष में जिस पर दूसरे धर्म संप्रदाय वालों ने राज्य
नहीं
किया है, फिर नेपाल के ऊपर राज्य नहीं कर सके। ऊंची स्टेज में राजधानी बनी हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई है।
दलाई लामा भी उसको मिलने गए थे।
हाँ, और बौद्धियों का विशेष कनेक्शन है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में। जन्म वो तो हद का हो गया, हद के बुद्ध का। बेहद का बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध की सोल जिसमें प्रवेश करती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसको जन्म देने वाला बेहद का बीज रूप आत्मा बुद्ध है। एडवांस पार्टी की आत्मा है।
उसके अंदर भी दो आत्माएं होंगी?
हाँ, दो तो।
दुआ तो होंगी उसके अंदर प्रवेश किया तो दुआ होंगी
आदि जो बताते हैं वो सब भक्ति मार्ग है। जो भक्ति मार्ग में माताएं टापती रहती हैं दीवारों पर जमीन पर वो टपना कहा जाता है।
बाबा राम रावण को फरकत देता है और रावण राम को फरकत देता है
तो आकति
हाँ तो बेहद में इसका
तो कब देता है राम रावण को फारकती और रावण राम को फारकती देता है कब देता है, है? सतयुग त्रेता में द्वापर कलयुग में देता है या संगम युग में देता है, है? कब देता है जरूर संगम युग में ही ये कार्य होता है। संगम युग में शिव बाप जब राम के तन में आते हैं तो अलफ को मिला अल्लाह बे बादशाही सारी बागीदार को दे दी। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। ये किसके लिए गायन है? है ये जो अल्पकाल की बादशाही है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वो अल्पकाल की है या सदाकाल की है? सदाकाल की है। अल्पकाल की बात सही है या संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? नहीं होनी चाहिए। हम ब्राह्मण तो सेवादारी हैं। हमारा बाप ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के आता है तो हम बच्चों को भी ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के रहना है। रावण उल्टा काम सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है। तो आदि में भी फारकती दे दी। राम वाली आत्मा अपना रास्ता पकड़ लेती है फिर तो उसका बदला कहाँ लिया जाता है? राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है या नहीं आती है? आती है तो रावण उसको फारकती दे देता है भाग्य से। सिर्फ राम को ही फारकती नहीं देता, जो भी राम संप्रदाय के हैं राम को फॉलो करने वाले उन सबको निकाल के बाहर कर देता है। गायन ही है पांडवों को देश निकाला मिला तो फारकती मिली ना कि अकेले राम को मिली है राम संप्रदाय को भी मिली। तो राम रावण को फारकती देता है और रावण राम को फारकती देता है परंतु ये अज्ञान का काम है या ज्ञान का काम है? ये फारकती देना ज्ञान का ज्ञान की बात है या अज्ञान की बात है? है ज्ञान की बात है ये तो अज्ञान हो गया। जब सब आत्मा आत्मा भाई भाई है तो कोई को फारकती देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आदमी राम वाली आत्मा ने फारकती दी, उस समय तो पूरा ज्ञान था ही नहीं, तो छोड़ करके चले गए। और अभी अभी तो पूरा ज्ञान का भंडार, पूरी वेदवाणी सामने आ गई है। जिसे कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकते। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सुप्रीम सोल बाप आता है, कोई आत्मा को छोड़ करके जावेगा क्या? है
नहीं,
नहीं छोड़ के जावेगा। तो बाप के बच्चों का क्या काम है? है बाप के बच्चों का भी यही काम है, कोई कितनी भी ग्लानिंग करे, कोई कितना भी ठुकराए, लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई। और
कुबेर जब बोलते हैं तो कुबेर यानी क्या चीज है, किसको कहा जाता है कुबेर?
कुबेर कहा जाता है धन संपत्ति के स्वामी को, और धन संपत्ति कौन सी है? ज्ञान की धन संपत्ति है। और वो ज्ञान की धन संपत्ति भी कब काम आवेगी? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी, या बिना प्योरिटी धारण किए भी काम आ सकती है? प्योरिटी धारण की जाएगी तो काम आवेगी। तो अष्टदेवों में महादेव का भी नाम है, ईश्वर नाम दिया है, परंतु कुबेर नाम नहीं दिया है। क्यों? क्यों कुबेर नाम नहीं दिया है? है? क्योंकि ज्ञान तो सारा धारण किया, परंतु तन कौन सा है? है? स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? और इस दुनिया में जितने भी पुरुष चोलेधारी हैं, वो सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन है। चलो नंबर वार सही, लेकिन है तो ना। तो ज्ञान धन को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाले कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? है? नहीं कहे जा सकते। हाँ, उनमें कोई स्त्री चोलाधारी एक है पुरुषार्थी जो कुबेर नामधारी पड़ता है, पवित्रता को भी पालन करता है, एक बाप का बन करके रहता है, और साथ साथ ज्ञान धन को भी धारण करता है, तो नाम कुबेर पड़ता है। बल चोला स्त्री का है, परंतु रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? है रुद्रमाला का मणका है। और
बाबा क्यों
कहे जाते नहीं है? संसार में कोई नहीं कहता, ये तो बाबा ने बताया, और हमारी आत्मा ये फील करती है। क्या? हमारी आत्मा इस बात को फील करती है कि जो भी मनुष्य मात्र है पुरुष रूप में है वो सब दुर्योधन दुशासन। कन्याएं माताएं भी फील करती हैं। हाँ तो समाज में नहीं कहे जाते हैं, ये तो राज बाबा ने बताया है। हाँ बोलो।
तो संगम योग राम और कृष्ण के चोला जो है इसको भी मैंने वो टाइटल होगा कि लागू होगा क्या?
तो आपने क्या समझ लिया कि राम कृष्ण के जो चोले हैं वो दुर्योधन दुशासन नहीं है? है? आप पूजा करते थे क्या? है? पूजा करते थे, अभी नहीं करते? अभी तो नहीं करते है? हाँ तो चोले की पूजा करते कि नहीं करते है? नहीं करते है? चोले को पूजनीय समझते या नहीं समझते है? पूजा की जाती है तो फल फूल पत्र अर्पण किया जाता है कि नहीं? वो फल फूल पत्र चैतन्य अर्पण किए जाते हैं या जड़ अर्पण किए जाते हैं? जड़, वो तो भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन से किए जाते हैं? यहाँ तो चैतन्य अर्पण किए जाते हैं। तो पूजा हुई या नहीं हुई? और पूजा एक की करना अच्छा है या अनेकों की करना अच्छा है? है? एक की। कैसे पता चलेगा एक बिंदी कौन सी है? ये पता कैसे चलेगा कि वो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बिंदी कौन है? ज्ञान के आधार पर पता चलेगा कि अमुक ये मुकर्रर रथ है जिस मुकर्रर रथ के द्वारा परमपिता परमात्मा राम राज्य स्थापन कराते हैं। तो आस्था होगी, एक बाप के ऊपर आस्था होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे, या आस्था नहीं होगी तो आस्तिक कहे जावेंगे? आस्था होगी तो आस्तिक, अगर आस्था नहीं है तो नास्तिक। हाँ, वो शरीरधारी अपने को भगवान न कहे, वो अपने को भगवान या बाप नहीं कह सकता, शिवोहम या ब्रह्मास्मि इन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों का काम है श्रद्धा विश्वास पक्की रखना।
और बाबा एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है।
हाँ,
एक वार्तालाप में कुमारों को बेहद के किसान कहा है। जो हाथ के किसान बैंकों से कर्जा लेकर शरीर का घात कर रहे हैं, तो बेहद के किसान कौन सा कर्जा ले रहे बाबा? बेहद का
कुमार है, वो पुरुष चोले हैं या नहीं है? हैं? तो जो विजयमाला निकलेगी, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करेगी, उनसे कर्जा मिलेगा कि नहीं है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनसे कर्जा लेते हैं, इसलिए सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। और कौन सा कर्जा? ज्ञान कौन सा? प्रैक्टिकल जीवन में जो काम आवे वो ज्ञान या रावण का ज्ञान? प्रैक्टिकल जीवन में काम आवे तो ज्ञान। राम वाली आत्मा के भी प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान कम काम कब करता है? जब विजयमाला आ जाती है तब काम करता है या पहले ही काम करता है? विजयमाला जब तक ना आए तब तक ज्ञान कोई काम का नहीं रुद्रमाला के लिए। हाँ जी।
बाबा, नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और पार्वती की पत्नी का नाम
नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और शंकर की पत्नी का नाम पार्वती है, तो ब्रह्मा के पत्नी का नाम क्या होना चाहिए?
ब्रह्मा जो है वो पहला पहला ऐसा पात्र है कि सृष्टि रचना में बच्चों के लिए उससे पहला कोई और होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है पहले किसको पहचानता है?
माँ को पहचानता है। तो ब्राह्मण बच्चों ने भी पहले कौन सी मूर्ति को पहचाना? ब्रह्मा को पहचाना। तो ब्रह्मा तो पहली मूर्ति है संसार की सृष्टि रचना में, उसका कोई बच्चा है ही नहीं क्या? तो जिसको ज्ञान देता है, जिस कन्या को, वो उसकी कन्या हो गई। सृष्टि रचना में सहयोगी किसको बनाएगा? है ज्ञान में जो बड़ा होगा उसको बनाएगा या कोई को भी बनाएगा? ज्ञान में जो बड़ा है उसको सहयोगी बनाते हैं। बाकी दुनिया भी लोगों ने उल्टी बात उठा ली है, क्योंकि विकारी है तो विकारी दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मा ने तो गुणों के आधार पर अपनी बेटी सरस्वती को सहयोगी बनाया, चिरसंगनी बनाया। मनुष्यों की तो अंधी अकल है। हाँ जी
बाबा, मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता भी है।
मनुष्य नहीं अकेला आता है,
आत्मा अकेला आती है। लेकिन रह नहीं सकती, ऐसा क्यों
है?
आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती भी है, लेकिन अकेली रह नहीं सकती।
अकेली रह नहीं सकती, अभी बाप सिखाने आया हुआ है कि तुमको अकेला रहना पड़ेगा। और
ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश कर दूंगा।
बिल्कुल।
इसका
स्पष्टीकरण ये है कि 70 साल हो गए बाबा को चिल्लाते चिल्लाते, और काम किसी ने किया नहीं किया, और यू उल्टा उल्टा करते चले जा रहे हैं। तो कोई सीमा होगी या नहीं होगी? जब सीमा पार हो जाएगी तो फिर विनाश करा देंगे। विनाश होना किसे कहा जाए? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश क्या है? ज्ञान में से टूट गए, बाप के ऊपर से विश्वास उखड़ गया, माना बाप के बच्चे नहीं रहे। और
बेहद ये चित्रगुप्त का पाठ किसका है
बाबा?
धर्मराज के साथ।
जिसके पास गुप्त चित्र रखे हुए हैं, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों के आसुरी चेहरे, और 63 जन्मों में कौन कौन ने कैसे कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए, वो अच्छे कर्म वाले चेहरे। कोई के चेहरे अभी असुरों के तैयार हो रहे हैं, राक्षस राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, और कोई के देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। वो चेहरे रखने वाला कौन? किसी के पास वो चेहरे होंगे या नहीं होंगे? और गुप्त रूप में है, वो ही उनका भेद जानता है। जिसके पास वो गुप्त रूप में चेहरे रखे हुए हैं, और कोई नहीं जानता इस राज को। उस चित्रगुप्त के पास सबका पोता मिल आता है।
संकलों भी पहले पहुंचते हैं ना उसके।
है?
संकलों भी पहले पहुंचते हैं उसके पास। संकल्प
क्या?
संकलों भी चित्रगुप्त के पास पहले पहुंचते हैं ना।
हाँ
पहले पहुंचते हैं
संकल्प।
आत्मा को संकल्प करती है तो सबसे पहले
चित्रगुप्त तक
पहुंचे।
अरे 500 करोड़ के संकल्प पहुंचेंगे क्या? जिसका कनेक्शन मिला हुआ होगा उसी का फोन पहुंचेगा या सबका फोन पहुंच जाएगा? कनेक्शन तो जोड़ना पड़े ना। और
बाबा बाइबिल में जो स्टोरी है नोआ आर्क की
है,
बाइबिल में जो स्टोरी दिखाई है नोआ जो बोट था नोआ आर्क, कुरान में भी जो कहानी है
बोलो ना
बाबा, वो संगम युग में किस चीज की यादगार है, उसकी शूटिंग
कहानी क्या है वो तो बताओ। और कहानी तुमको भी नहीं मालूम, कहानी यहाँ किसी को नहीं मालूम, तो टैली क्या किया जाए? हाँ जी
मेवाड़ के एक छोटा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है. मेवाड़ के राजा जयसिंह और उसकी पत्नी किसी कारणवश मुगलों के मुगल एम्परर को शीशे में से अपना अक्ष दिखाना पड़ा, पद्मनी को, रानी पद्मनी को.
हाँ जी.
तो लेकिन जो एम्परर था, जो मतलब मुगल बादशाह था, उसने उनकी सुनी नहीं और बाद में चढ़ाई कर दी. और इसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर को कर दिया. शूटिंग कब और कहाँ हुई?
यहाँ दर्पण कौन सा है? ज्ञान का दर्पण है. उस ज्ञान के दर्पण में रानी पद्मिनी के चेहरे को देख लिया, सुंदरता को. इसमें कौन सी बेहद की सुंदरता भरी पड़ी है? अंदरूनी सौंदर्य भरा पड़ा है. वो अंदर ही अंदर फिदा हो गया. अब जो फिदा हो जाता है और फिदा होने वाले में अगर देवान होगा तो वो ईर्ष्या बस आक्रमण करेगा या नहीं करेगा? वो आक्रमण करता है. आक्रमण कर नहीं रहे क्या अभी? और
पंढरपुर में ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे देवताओं को कमर पे हाथ रखते हुए दिखाया गया है.
है
कमर में हाथ रखते हुए दिखाया गया है.
कमर में
हाँ, बाकी देवताओं को भी दिखाया गया. ऐसा क्यों?
लक्ष्मी जी का कहते हैं ऐसे कमर पे हाथ रख के युगल जोड़ी
है.
और कोई देवता
जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कमर कस के खड़े हो जाते हैं.
महाकाली के तीन रूप है ऐसे एक कैसेट में कहा
है.
काला, नीला और हरा.
हाँ जी.
तो इसका
अभी एक प्रश्न आया है इधर. दुर्गा महाकाली बनती है, जब दुर्गुणों को दूर करने वाली बनती है तो उसका अच्छा रूप है या बुरा रूप है? है अच्छा रूप है. और जब महाकाली बनती है तो काला रूप सामने आता है या अच्छा रूप सामने आता है? काले का मतलब क्या है? काला मुंह वाला. इसने काला मुंह कर लिया. काले कर्मों की निशानी है काला मुंह. तो वो काल भी है, महाकाली कही जाती है महाकाल के साथ, इसलिए काला रंग भी है. और क्रोध में भी आती है. जब क्रोध में आता है तो बाबा ने कहा अपने को चांडाल समझो. नाम ही क्या दिया है मुरली में? चंडिका देवी. तो चेहरा नीला दिखाया गया है, उसको कहते हैं सांवरा. और जब वो अपना काम पूरा कर लेती है और आंखें खुलती हैं, मैंने ये क्या किया, तो नई दुनिया की हरियाली तैयार होने लगती है. पश्चाताप करने से सब विकर्म नाश हो जाते हैं. कहते हैं कि श्रावण के अंधे को क्या सूझता है, जहां देखेगा वहां हरा ही हरा देखेगा. ये ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है जगदम्बा के रूप में. उसने गोरे से गोरा पार्टी भी बजाया ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज में कोई को दुख दिया? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से कोई का बुरा सोचा? नहीं सोचा। तो कैसा पार्ट कहेंगे, गोरा पार्ट कहेंगे या काला कहेंगे? गोरा पार्ट। और जिसने इतना गोरा पार्ट बजाया है उसके साथ बच्चों ने कैसा सलूक किया? अच्छे से अच्छा सलूक किया या प्राण ही ले लिए? प्राण ले लिए। ऐसे बच्चों के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में यही पूरा होगा। तो वही आत्मा महाकाली का रूप धारण करती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हाँ जी,
बेहद में बाबा अश्वस्थामा का पार।
अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थान और मां माने मां। उसके मस्तक में क्या था? मणि थी। ये मणि जो है आत्मा रूपी मणि है। आत्मिक स्थिति रूपी मणि तो अश्वत्थ रामा का मतलब ये है मन रूपी घोड़ा जो मां का पार्ट बजाने वाला है और स्थिरियम रहने वाला भी है परंतु बाप को नहीं पहचानता, इसलिए सारे काम उल्टे हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। कौओं की तरह शोरगुल मचाने वाले, अज्ञान अंधकार जो फैलाने वाले हैं उनका साथ दिया। भगवान और भगवान के बच्चों को पहचाना ही नहीं तो साथ देने की बात ही नहीं। हाँ जी
बाबा, अश्वस्थामा है तो भक्ति मार्ग को बोलते तो उसको मारते हैं फिर भी वो नहीं मरता, नदी के किनारे ऐसे महसूस होता है आदमियों को कि वो आवाज दे रहा है। अश्वस्थामा को मारते हैं फिर भी वो मरता नहीं और कलयुग में सदा के लिए नदी के किनारे रहता है और कोई आदमी दिखा के आवाज लगाता है,
है?
आवाज देता है तो वो अमर है।
जो आत्मा रूपी मणि है वो आत्मा रूपी मणि निकल गई तो मरे हुए के समान हो गया या उसको जिंदा कहेंगे? अगर आत्मा रूपी मणि रहती तब तो सारा कार्य संपन्न हो जाता, लेकिन किया धरा सब बराबर हो गया। और कलयुग में ऐसे ही काम होते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित रह नहीं पाते हैं।
भक्ति मार्ग में अमर क्यों बोलते हैं उसको? अमर है अभी भी आवाज लगा
था। अमर तो सारी आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने की बात है। और आफरीन देने का मतलब है कोई ने हिम्मत की कोई कार्य करने की, कोई सेवा करने की हिम्मत की और बाप ने उसको मदद दे दी, आओ करो, तो ये आफरीन देना हुआ। हाँ जी
बाबा,
है
गांधर
अभी जो बाप पार्ट बजाए रहा है वो विदेशियों का पार्ट, यादवों का पार्ट बजाए रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजाए रहा है? कौन सा पार्ट बजाए रहा है? अरे बाप विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर के आया है? है? विदेशी बनकर के आया है। शंकर के रूप में पार्ट कहो, वो भी यादवों का हेड है और भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी यादवों का हेड बताया है। यादवों का मुख्य काम क्या है? स्थापना करना, पालना करना या विनाश करना? क्या करना, क्या करते हैं? दुनिया में आकर के वो यादव कोई काम करके खास जाते हैं या नहीं? अरे यादवों के पेट में से मूसल निकले तो क्या काम किया? विनाश किया। तो यादवों का जो मुखिया है उसका मुख्य काम क्या हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। कृष्ण के लिए भी यही है, महाभारत युद्ध कराया, सब खलास हो गए। द्वारका का मतलब ही क्या है? दो अरिका या एक अरिका? दो अरिका। द्वैतवादी दुनिया डूब जाती है, सत्युग त्रेता नहीं डूबता है।
बाबा, धर्म बाबा ने 12 गुरु किए तो ऐसा रस खाए
है?
धर्म बाबा ने 12 गुरु के लिए ऐसा
रहस्य
ब्रह्मा की सोल जो है वो चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रमा है। और चंद्रमा की रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है रोशनी। सूर्य जब उगता है तो अकेला रोशनी देता है या सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी हैं? किरणें भी हैं। तो 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी, जिनके ज्ञान से वो प्रभावित होता है। और वो 12 आत्माएं आखिरी जन्म में जाकर के अलग अलग धर्मों में गिरती हैं। तो 12 प्रकार के गुरु हो गए। बारह गुरुओं को फिर छोड़ दिया, वो देहधारी गुरु हैं कि सदाशिव हैं? देहधारी गुरु हैं। ओम शांति।